ओम शांति। आज हम आपके सामने उन कुछ धारणाओं पर चर्चा रख रहे हैं जो इस जीवन को थोड़े ही समय में अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में बड़ी सहायक सिद्ध होंगी। इस ब्राह्मण जीवन में हम कहेंगे सबसे अधिक महत्व स्वचिंतन का है। स्वचिंतन किस तरह किया जाता है? एकांत में बैठकर स्वयं से स्वयं की उन्नति के बारे में बातें करनी चाहिए, विचार करने चाहिए। यूं भी इस दुनिया में हरेक व्यक्ति को स्वचिंतन का पहले से ही अभ्यास है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो हमेशा उसका चिंतन करते हैं, बिजनेस कैसे वृद्धि को प्राप्त हो, उसमें ये विघ्न आ रहा है उसको कैसे समाप्त किया जाए। स्वचिंतन की सभी को आदत अवश्य है। उस स्वचिंतन को अब रूहानियत की ओर मोड़ देना, एकांत में बैठकर अपने से इस तरह बातें करें कि ये संगम युग जो अति श्रेष्ठ भाग्यों के फल स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरीय मौजों का युग है, जिस पर हम मन चाही प्राप्ति कर सकते हैं, जितना समय चाहे ईश्वरीय मिलन मना सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, अपना भाग्य जन्म जन्म के लिए, पूरा 84 जन्मों के लिए जैसा चाहे निर्माण कर सकते हैं, इस ईश्वरीय मौजों के युग को हम किस तरह बिताएं। ये जीवन जो बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे ही कहें कि ये जीवन भी एक वरदान है, ईश्वरीय वरदान। ये जीवन अब जबकि तीसरा नेत्र खुल गया है, जबकि इस मन में प्रकाश आ गया है, अंधकार मिट गया, तो ये जीवन अब उलझनों में न बीते। किसी भी चीज में आप स्वयं को उलझा कर न रख लें, और उलझाने वाली बातें बड़ी नहीं बहुत छोटी होती हैं। तो ये मौजों का युग है, अतिंद्रिय सुखों में बीते। अंतर्मुखी होकर चिंतन करें कि जिस भगवान को पाने के लिए जन्म जन्म हम सभी अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते थे, ये संकल्प करते थे कि भगवान की एक झलक दिख जाए और हम सब कुछ छोड़ दें, हमें कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, उसको पाने के बाद हम इस संसार में क्या पाना चाहते हैं, किस लिए भागदौड़ है, क्यों नहीं आत्मा संतुष्ट हो रही। चिंतन करें आप स्वयं। सारा संसार इच्छाओं का गुलाम, इच्छाओं की दौड़ में शांति भंग कर बैठा है। क्या हम भी भगवान के बच्चे बनकर संसार की विनाशी प्राप्तियों की दौड़ में अपने अनमोल समय को यूं ही गंवा दें, इस जीवन को उलझा दें? क्या चाहते हैं हम, ये स्वयं चिंतन करें। जितना अच्छा चिंतन होगा, विचारों में महानता आएगी, हाई थिंकिंग होगी, जो इस जीवन को बदलने के लिए सबसे श्रेष्ठ भूमिका निभाएगी, जिसे हम जीवन परिवर्तन कहते हैं, उसको अगर विचार परिवर्तन भी कहा जाए, केवल विचार परिवर्तन, जैसे मनुष्य के विचार वैसा ही उसका जीवन होता है, स्वचिंतन के द्वारा एकांत में हम अपने विचारों को ऊंचा उठाएं और ये चेक करें कि बाबा के बनने के बाद हमारे विचार कहीं वही तो नहीं हैं जो पुराने चले आ रहे थे। परिवर्तन हो गया? जीवन परिवर्तन की बात सोचने से पहले विचारों के परिवर्तन पर ध्यान देना है। और ये देखो, एक बार चेक करो अपने पूरे मन के रिकॉर्ड को, मन के अकाउंट को, इस दर्पण में देखो कि विचार वही हैं या दिनों दिन हमारे विचार ऊंचे हो रहे हैं। ऊंचे अर्थात वही जो बाबा कहते हैं, जैसी बाबा की आज्ञाएं हैं वैसा हम सोचते जा रहे हैं, या हमारा चिंतन पुराने संस्कारों से, पुरानी मान्यताओं से और पुरानी बातों से प्रभावित है। तो इस तरह स्वचिंतन चलता रहे, ऐसे एक स्वचिंतन की दूसरी बात, हम इस संगम युग पर क्या क्या कर सकते हैं अपने से पूछें। आप आपके अंदर से आवाज उठेगी, ये कर सकते हो, ये पा सकते हो, और हम क्या कर रहे हैं। जो सहज मिल सकता है उसे पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या मिल सकता है इस संगम युग पर। तो बैठकर चिंतन करेंगे, लिखेंगे क्या मिल सकता है, क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। इससे जीवन में नया उमंग उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि ये जीवन जिसमें आप अनुभव कर चुके होंगे माया से निरंतर युद्ध का जीवन भी है, और इस युद्ध में हमारी विजय हमें निरंतर उत्साह देती है, बल देती है, हिम्मत भी देती है। परंतु इसके साथ साथ हम अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह को स्वयं भी कायम रखने का आर्ट सीखते चलें, और वो आर्ट है एकांत में जाकर स्वचिंतन करना। उमंग, हिम्मत, ये इस जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जिन पर ये ब्राह्मण जीवन की गाड़ी तेजी से चलकर अपने मंजिल पर पहुंच सकती है। अगर उमंग ठंडा हो गया, अगर हिम्मत हार गई, तो जीवन की गाड़ी वहीं रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी, प्रोग्रेस ठंडी पड़ जाएगी, और हम अपने लक्ष्य को बहुत दूर देखकर निराश हो जाएंगे। तो सबसे पहली आदत जो सभी को डाल देनी चाहिए इस जीवन में, स्टूडेंट लाइफ को और अधिक आनंदित करने के लिए, एकांत में स्वचिंतन और उसके द्वारा हाई थिंकिंग, ऊंचे विचारों का निर्माण। और इस हाई थिंकिंग में आप सभी को एक बात बहुत स्पष्ट रहे कि जब हम ऊंचे विचारों का निर्माण करना चाहते हैं तो हमारी मन और बुद्धि दोनों की ही शक्तियां ऊंचे विचारों के निर्माण में लग जाती हैं। परंतु अगर हम अपने मन और बुद्धि की एनर्जी को, शक्ति को इधर उधर लगाते रहते होंगे, दुनियावी बातों में लगा रहे होंगे, आप चिंतन करें कहां कहां लगाई जाती है। खाना पीना, पहनना और कमाना, इसमें हमारी सारी मन बुद्धि की शक्तियां जा रही होंगी। व्यर्थ के गपशप, व्यर्थ की बातें सुनना और सुनाना, व्यर्थ का चिंतन करना, इसमें अगर हमारी मन और बुद्धि की शक्ति जा रही होगी तो हाई थिंकिंग, ऊंचे विचार कभी नहीं हो सकते। ऊंचे विचारों के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मन और बुद्धि की शक्ति को इधर उधर व्यर्थ जाने से रोक दें। मान लो किसी को अच्छा अच्छा भोजन खाने की आदत है, छोटी सी बात, दुनिया में बहुत लोगों को अच्छा भोजन खाने की आदत है, और आप घर में 4-6-8 घंटे भोजन बनाने में ही लगा रहे हैं। अब ये बना लें, ये अच्छा नहीं बना, ऐसे कर लें, तो क्या होगा, ऊंचे विचारों का निर्माण कभी नहीं हो सकेगा। ऐसे ही ये जो भी देह की प्रवृत्ति है, देह की प्रवृत्ति, देह को संभालने की प्रवृत्ति, इसमें हमारी संपूर्ण शक्ति न जा रही हो। अगर हम विचार करें एक बेहद की दृष्टि से, तो पूरे 84 जन्मों में हमने, आत्मा ने, केवल अपने 84 शरीरों को ही तो संभाला है, और क्या किया है, शरीरों की प्रवृत्ति को निभाने में, शरीरों की पालना करने में 4 युग बिता दिए। ये युग भी शरीर की प्रवृत्ति में पूरा न हो जाए, इस शरीर के ही संचालन में हमारी शक्तियां न लगती रहें, और अगर कोई ब्राह्मण बनने के बाद ऊंचे विचारों का निर्माण न कर सके तो क्या होगा, ज्ञान और योग का आनंद कम हो जाएगा। ऊंचे विचारों का निर्माण ही ऊंची स्थिति का और ऊंचे से ऊंचे आनंद का अनुभव कराता है। योग के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप लिख तो नहीं रही हैं। तो जितने ऊंचे विचार हम क्रिएट कर सकें, उतना ही ये जीवन आनंदित होगा। ये अपने पास एक मंत्र बना लें, सवेरे उठकर भी और सोते समय भी कम से कम दो समय ऊंचे विचारों का निर्माण किया करें। और ऊंचे विचार कहां से मिलेंगे आपको? कहां हैं ऊंचे विचार? आपके पास एक बहुत विशाल भंडार है ऊंचे विचारों का, मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां विशेष, उसमें भी जिनका अध्ययन ऊंचे विचारों के निर्माण में मदद करेगा। और जैसे आप आज तक अमृत वेले का महत्व सुनते आ रहे हैं, वैसे ही ये भी अच्छी तरह जान लें कि सोने के समय से पहले का भी उतना ही महत्व है। सोने के समय से पहले आधा घंटा, 20 मिनट आप अपनी स्थिति को फिर से फ्रेश करके सो। ऐसा ना हो कि सारा दिन जो विचार मन पर छाए रहे हैं, जो बोझ मन को परेशान करता रहा है, उसको ये लेकर बस नियम निभाने के लिए 2 मिनट बाबा को याद किया और सो गए। इससे स्थिति श्रेष्ठ नहीं बनेगी। बाबा ने एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत सुनाया है कि रात को बैठकर जो भी मन पर कोई बोझ हो गया हो, वो बाबा को याद करके बाबा को सुना दो या लिख दो 5 मिनट में, और बाबा को समर्पित कर लो। एक बॉक्स रख लो अपने घर में, और जो भी बोझ सारा दिन हुआ करे, शाम को 3 मिनट में लिखा और उस बॉक्स में डाल दिया। और आप अनुभव करेंगे, जब आप सवेरे उठेंगे, पिछले दिन का मन का कोई भी बोझ आपके मन पर नहीं होगा, मन फ्रेश होगा और योग की अच्छी स्थिति बन पाएगी। तो सोने से पहले मन को फ्रेश करना, अध्ययन करना और अच्छी स्थिति में कम से कम 15 मिनट रहना। जिसके घरों में स्थान हो तो घूम फिर कर अच्छे विचारों में और योग अभ्यास में रहेंगे तो सवेरे का समय बहुत ही सुखद व्यतीत होगा और जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी ये शाम की 15-20 मिनट आधे घंटे की स्थिति। इस तरह स्वचिंतन करते हुए अब आगे बढ़ें प्रैक्टिकल जीवन में। जब हम सभी को बाबा की रोशनी मिलती है और हम संसार को बड़े गौरव से कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, वो हमें मिल गए हैं, तो संसार सबसे पहले हमारी वाचा को देखता है। हम बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, हमारा बोलने का तरीका कुछ अलौकिक हुआ है या वैसा ही है जैसा हम बोलते आ रहे थे। आज के संसार में जैसी मान्यताएं हो गई हैं कि जरा भभके से बोलो, जरा रोग से बोलो, कहते हैं ना लोग, तुम स्मार्ट तभी माने जाओगे जब अधिक से अधिक बोलोगे। चुप रहने वालों को लोग बुद्धू समझते हैं और भगवान चुप रहने वालों को महान समझते हैं। तो भगवान की मानेंगे या मनुष्यों की, ये निर्णय करना है। हमारे बोल, हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने आकर हमें बोलना भी सिखा दिया। हम बोलना नहीं जानते थे, माया की भाषा बोल रहे थे, मैं कर रहे थे, रावण के अधीन होकर बात कर रहे थे। उसका इतना अधिकार हो गया था हम पर कि जैसा वो हमें चलाता था वैसे ही हम चलते थे। अब भगवान ने बोलना सिखाया। भक्ति में भी लोग कहते हैं गूंगे भी उसकी कृपा से बोलने लग जाते हैं। सभी गूंगे हैं क्योंकि बोलना नहीं आता। दुखदाई बोल बोलना, दूसरों को परेशान कर देने वाले बोल बोल देना, दूसरों की खुशी को छीनने वाले बोल बोलना, ये गूंगापन ही कहलाएगा। भगवान ने हमें बोलना सिखाया है, हम बोलना भी सीखते चलें। एक पर दो बोल देना, दुनिया में कहावत है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो तब दूसरे शांत हो सकेंगे, नहीं तो दूसरे लोग बोलते ही जाएंगे। अपने भाई बहने भी कहा करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 200 लोग साथ हैं, बोलते ही रहते हैं, हम कहां तक चुप रहें? चुप रहते हैं, हमारी सहनशीलता का लोग फायदा उठा के और बोलते जाते हैं, और सोचते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने इन्हें बुद्धू बना दिया, कायर बना दिया। ये प्रैक्टिकल समस्याएं छोटी छोटी आती रहती हैं, परंतु ये क्यों आ रही हैं? सहनशीलता के साथ, अगर स्वमान नहीं है, रुहाव नहीं है, तो सहनशीलता दूसरों को कमजोरी दिखाई देती है। और सहनशीलता के साथ अगर ईश्वरीय नशा भी हमारे चेहरों पर छाया हुआ है, रुहाव प्राप्ति का नशा, प्राप्ति की खुशी भी हमारे जीवन में छाई हुई है, तो हमारी सहनशीलता का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्हें साहस नहीं होगा। सहनशीलता अपने में एक बहुत बड़ा गुण है। किसी भी गुण की अगर हंसी उड़ाई जाती है तो उस गुण के साथ जिस शक्ति का होना आवश्यक है उसकी कमी है। सहनशीलता के साथ शक्तियां भी हो, रुहाव भी हो, तो हमारे बोल कैसे हो, जो दूसरों के दुख मिटाते चलें। भक्ति में आप सभी को अब यहाँ आकर, बाबा के पास आकर स्मृति आ गई कि हम वही देवी देवता हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ठीक है, आ गई ना स्मृति। वही शक्तियां हैं जिनसे भक्तों को वरदान मिल रहे हैं। तो हमें इस बात का भी एहसास रहे कि हमारे बोल अभी भी सिद्ध होने वाले होते हैं। अगर हम दूसरों को गलत बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों का अकल्याण होगा, परंतु आदत होती है बोलने की। जिसने कुछ बोला, बदले की भावना हुई, और माताएं क्या क्या बोलने लगती हैं गुस्से में, रिपीट करो जरा, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारे बेटे मर जाएं, तुम बीमार हो जाओ, हड्डियां टूट जाएं, बोलते हैं ना ऐसे। अब ये बोल हमारे मुख की शोभा न हो, ये श्राप है। हम अब वरदानी बन रहे हैं, मास्टर वरदाता बनने जा रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे बोल निकलना, एक तो हमारी शोभा नहीं है, हमारे बाप की शोभा नहीं है, और इसके साथ साथ इससे हमारी शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। आपने 2 साल तपस्या की और मुख से किसी को श्राप दिया, 2 साल की तपस्या नष्ट। इसका भी ध्यान रहे। जैसे क्रोध काम मनुष्य की तपस्या में की गई संग्रहित शक्तियों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही व्यर्थ बोल, दूसरों को श्रापित करने वाले बोल भी हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं। तो जरा इस पर विशेष ध्यान दें कि हमारे बोल बाबा का नाम रोशन करने वाले हों, और लोग पहली पहचान इसी बात से करेंगे कि आज तक ये बोलते थे, गाली देते थे, और अब इनके बोल में कितना सुधार आ गया है, कितनी रॉयल्टी आ गई है और दिव्यता आ गई है। घरों में छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। मान लो आपके घर में 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जिसकी बुद्धि कम है, जो पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, जो काम ठीक से नहीं करता है, तो घरों में क्या होता है, प्राय सभी लोग बोलते रहते हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम कोई काम के नहीं, हमारे घर में बोझ बनकर आ गए हो, तुम तो होते ही मर जाते तो अच्छा होता, बोलते हैं ना ऐसे। तो क्या है, एक छोटा बच्चा, मान लो 5-7 साल के बच्चे को ये सुनना पड़ रहा है कि ये तो बुद्धू है, तो उसको बहुत ज्यादा बुद्धि तो है नहीं, वो बेचारा स्वीकार कर लेता है कि सचमुच मैं तो बुद्धू ही हूँ, मैं कोई काम का नहीं, और इससे क्या होता है, उसका विकास रुक जाता है। बाबा ने हम सभी को बदलने के लिए कितना एक शेष तरीका अपनाया, अगर हम उस पर विचार करें। हम सब बुद्धू बन गए थे, जीवन संपूर्ण रूप से भ्रष्ट और पतित हो गया था, और बाबा ने आते ही ये नहीं कहा कि तुम तो बड़े गंदे हो, पतित हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कहा ये? कहा कि तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम्हें ही तो बनना है, कल्प कल्प तुम विजयी बने हो, महान योगी बने हो, तुमने संसार को बदला है, तुमने संसार को नया मोड़ दिया है, तो हमारे स्वमान को जगा दिया। तो जैसे बाबा ने हमारे जीवन को बदला है, एक बहुत सुंदर तरीका अपनाया, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी हम सबको, मन को बदलने के लिए, मन में सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का कितना अच्छा तरीका अपनाया है, ये बार बार याद दिलाया, तुम महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, सफलता तुम्हारी ही होगी। कितना अच्छा पॉजिटिव अप्रोच, एक अच्छे विचारों का दर्शन हम सबको कराया और हम सब बदल गए। पहले हम हिम्मत हार बैठे थे, हिम्मत आ गई तो घरों में किसी को भी, बच्चा हो, भाई हो, कोई भी हो, उसकी अयोग्यता का, उसके अवगुणों का, उसकी हार का बार बार वर्णन नहीं करना है, नहीं तो विकास रुक जाएगा। हमारा उनसे स्नेह है, हमें उनके प्रति सद्भावनाएं हैं, तो अगर गलती भी हो जाए तो बाबा की तरह हम यही कहें कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब इसे ठीक कर लो, ऐसे सुधार लो। ये कहने वाले तो इस संसार में बहुत लोग हैं कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये कहने वाले बहुत कम हैं कि ऐसे ठीक कर लो। तो हम ऐसे कहने वाले बने जो दूसरों को जीवन में निराशा न हो, हमारे बोल ऐसे न हो जो दूसरों की हर चीज को ढीला कर दें। उदाहरण के रूप से बाबा एक बहुत ऊंची बात हम सबको कहते हैं कि तुम किसी को ये न कहो कि ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। घरों में भी ये बोल देते हैं कभी कभी, बच्चे नहीं सुधर रहे कि भाई ये तो सुधरेंगे नहीं, भगवान चाहे आ जाए इनको मानना नहीं है, ये भी स्थापित करने वाले बोल हैं। हमें अपने मुख से यही बोलना है कि ये जरूर सुधरेंगे, इसमें ही हमारी शुभ भावनाओं का प्रभाव उन आत्माओं को प्रभावित करेगा। तो वाचा अपनी अवश्य बदलनी है। वरदानी बोल हो वो तो बहुत छोटी बात है कि हमारे बोल मीठे हों, कड़वे न हो। हम ये न सोच लें कि सत्य तो कड़वा ही होता है, दुनिया की मान्यता, लेकिन हमने सत्य को अपने सामने देखा, आप सबने भी देखा, सत्य, सत्य ज्ञान और सत्य शिव बाबा, हमारा सत्य स्वरूप कड़वा है या बहुत मीठा? कितना मीठा है कि उसके दर्शन से सारा संसार मीठा बन जाता है। ये गलत मान्यता थी कि सत्य कड़वा होता है, सत्य को कड़वा बना दिया जाता है, होता नहीं है। अगर सत्य में क्रोध मिल जाए, अगर सत्य में अहंकार को मिला दिया जाए, अगर सत्य में कहने के तरीके को गलत कर दिया जाए तो सत्य कड़वा हो जाता है। बहुत करके लोग यही सोचते हैं कि हमें तो सत्य बोलना है और सत्य को बिना प्रेम के बोल देते हैं। बाबा ने भी हम सबको सत्य कहा और बाबा ने हमें इतने तक कह दिया कि तुम बहुत पतित हो, तुम कोई काम के नहीं थे, लेकिन किसी को ऐसा फील हुआ कि बाबा ऐसा क्यों कहता है? क्यों नहीं फील हुआ? सत्य कहा कि तुम बिल्कुल नीचे उतर चुके हो, भक्ति के लिए भी कह दिया, वो दुर्गति हो गई थी, अनेक बातें ऐसी ऐसी भी कही जिनको हम सुनना नहीं चाहते थे, परंतु उसको कहने से पहले हमारे स्वमान को जागृत कराया कि तुम बहुत महान हो, और जब हम सुनने के लिए तैयार हो गए तब चुपके से सुना दिया कि तुम ऐसे भी हो। बाबा की मूल्यों से आप नोट करेंगे, अव्यक्त मूल्यों से, बाबा को अगर एक लक्ष्य है कि मुझे आज इन बच्चों को क्रोध पर समझाना है, ये काम आपके घर में आप प्रयोग कर सकते हैं यही विधि, तो बाबा डायरेक्ट आकर ये नहीं कहेगा कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, इसको छोड़ दो, इससे ये नुकसान होता है। पहले आते ही हमारे स्वमान को जगाएगा कि तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम महान हो, तुम्हें संसार में शांति स्थापित करनी है, तुमने कल्प कल्प शांति स्थापित की थी, तुम्हारा एक एक संकल्प शांति के वाइब्रेशंस फैलाएगा। स्वमान में जब हम एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे कि हम तो रियली महान हैं, तब कहेगा अब ये क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता, तो हम मान लेंगे कि बात बिल्कुल ठीक है, हम इतने ऊंचे, हमारा काम इतना ऊंचा, तो ये भला क्रोध हमें कहां शोभा देता है। तो आत्मा को कमजोरी स्वीकार कराने का कितना रॉयल तरीका अपनाया बाबा ने, यही तरीका आप सब अपने परिवारों में संबंध संपर्क में आते हुए भी अपनाएं। ये जो तरीका हम अपना लेते हैं कि दूसरे की गलतियों को फौरन कह देना, करेक्शन देने की आदत बना लेना, दूसरों को डांटते ही रहना, ये दूसरों को सुधारने के तरीके नहीं हैं। इस तरह अपनी वाचा को नम्र भी बनाएं, स्वमान में भी स्थित होकर बोलें। आपने देखा होगा जिन्होंने इतिहास पढ़ा, हम हमेशा एक उदाहरण दिया करते हैं, माताओं को भी ख्याल होगा, बहुत समय पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पोरू का उससे पहला युद्ध हुआ, और पोरू जब अरेस्ट कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया
और सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरू ने क्या उत्तर दिया, माताओं को पता है कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और ये बात सुनकर सिकंदर बहुत प्रसन्न हो गया कि कितना बहादुर व्यक्ति है जो मेरे अंडर होते हुए भी, मरने पर पहुंचते भी बड़े स्वमान से बोल रहा है, और उसने उसको छोड़ दिया और दोस्त कर लिया। तो ये क्या था, उसके सामने मृत्यु थी, राज भी चला गया था, लेकिन उसने अपना स्वमान नहीं छोड़ा कि मैं राजा हूं। वो भीख भी मांग सकता था कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा, ये भी तो कह सकता था। उसने ये नहीं कहा, अपने स्वमान को नहीं छोड़ा। स्वमान के बोल से परिस्थिति बदल गई ना। इतिहास की बहुत प्रसिद्ध घटना है ये, किस तरह एक सेकंड के स्वमान के बोल ने इतिहास को प्रभावित कर दिया। हम सब भी इतिहास बदलने वाले हैं, हीरो एक्टर्स। हम अपने बोल में स्वमान भरते जाएं, अर्थात स्वमान में स्थित होते जाएं, तो हमारे बोल कभी भी हीनता के नहीं होंगे। इस तरह अपने बोल को वरदानी बनाएं और आगे चलें। जैसे अभी आपने सुना विज्ञान भवन में पानी बह गया, सुना ना, ऐसे ही जो शक्ति हम योग के द्वारा इकट्ठी करते हैं वो बहती न जाएं। और वो बहती हैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज, क्रोध में, काम में बहती है वो सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर क्रोध में, तीसरा नंबर इच्छाओं में, अहंकार में, व्यर्थ संकल्पों में। इनको आप, इस लीकेज को बंद कर दे, इन छिद्रों को बंद करते चलें, अवगुणी दृष्टि में, परचिंतन में, दैहिक दृष्टि में हमारी शक्तियां बहती जाती हैं, आत्मिक दृष्टि में, योग अभ्यास में, श्रेष्ठ चिंतन में, शांत स्वभाव में, स्वमान में रहने से शक्तियां जमा होती रहती हैं। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम क्रोध पर करते हैं। क्रोध आता ही है प्राय सबको, या कोई ऐसे यहाँ बैठे हैं जो क्रोध नहीं करते कभी, हैं कोई, हो तो हाथ उठाओ, एक दो तीन चार, बहुत हैं, तो आपको तो प्राइज मिलना चाहिए भाई, तो बड़ी खुशी की बात है। जिन्होंने क्रोध को जीत लिया हो वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। अब क्रोध का जरा विश्लेषण कर लें, क्रोध क्यों आता है, क्यों क्रोध का स्वभाव बन गया है, और बाबा ने क्रोध को जीतने के लिए माताओं पहला महामंत्र क्या दिया, माताएं बताएंगी और कोई नहीं। क्रोध को हम जीत लें, पहली पहली बात बता दी, सबसे पहली ज्ञान की, कौन हो तुम, और एक शब्द इसके आगे, कैसी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हो, इसको स्वीकार किया है, कर लिया स्वीकार कि हम शांत स्वरूप हैं। सोचो जरा, अपने से पूछ लो आंख बंद करके, कि स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं, तो मेरी शांति को, जैसे अगर मान लो बर्फ बहुत ठंडा होता है और बर्फ में कोई आग लगाना चाहे, लगा सकता है, कितनी मेहनत करनी पड़े बर्फ में आग लगाने के लिए, तो भला मेरी शांति को कोई क्रोध की अग्नि में क्यों जल्दी से बदल दे। ठीक बात है ना। अब विचार करना कि घर में सवेरे से छोटी छोटी बातें मन को चिड़चिड़ा या क्रोधित न करे। अब आप देख रहे हो मन चिड़चिड़ा या क्रोधित कहाँ कहाँ होता है, जब ज्यादा काम हो, ठीक है ना, काम ज्यादा हो रहा हो, कोई और बता दे ऊपर से तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कोई हमारी इच्छा के अनुसार काम न कर रहा हो, किसी को बहुत चुस्ती से काम करने की आदत हो और दूसरा साथी ठंडा मिल गया हो, तो उसे देख देख ही गुस्सा आता रहता है, भाई वो है ही ठंडा, जन्म से ही बेचारा ठंडा है, गुस्से से तो वो तेज हो नहीं सकता। हाँ, उसको तेज करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो मनुष्य की ये कामना कि जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे भी हों, ये कामना उसको परेशान करती है, क्रोधित करती है। परंतु क्या ये संभव है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब हों, कहीं हो सकता है संसार में ये? हम तो ज्ञान से भी जानते हैं और दुनिया को देखते हैं उससे भी जानते हैं कि जैसा मैं हूं वो मैं ही हूं, हर एक अलग अलग है, एक आत्मा दूसरे से नहीं मिलती। एक की बुद्धि, एक के संस्कार, एक के विचार व्यवहार दूसरों से नहीं मिलता। तो जीवन में ये एक परेशानी का आधार जो मनुष्य बनाए रखता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरे भी हों, इस पर जरा विचार करें। दूसरे वैसे नहीं हैं तो हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। हम बिल्कुल टाइम पे आते हैं एक्यूरेट, और दूसरे हमेशा ही आधा घंटा लेट आते हैं। उन्हें सिखाया तो जा सकता है, परंतु क्रोध करना गलत होगा। हमें एक तरह का रहन सहन जीवन अच्छा है, एक तरह का भोजन अच्छा है, तो हमारे साथियों को भी वैसा ही हो, ये संभव नहीं है। परिवारों में भी इन चीजों का प्रयोग करें। हर आत्मा अलग अलग है, लेकिन इस अलग अलग होने में भी समानता लाई जा सकती है, लेकिन क्रोध के द्वारा नहीं, स्नेह के द्वारा, स्वमान के द्वारा। और जब भी किसी मनुष्य को क्रोध आता है, उसके पीछे एक ही बात होती है, किसी ने कुछ कहा और हमें क्रोध आया, दोनों के बीच में एक सेकंड में एक प्रश्न उठ जाता है, क्यों? और ये क्यों हमें क्रोधित कर देता है। किसी ने हमारी इंसल्ट की, फौरन उठेगा क्यों की। हम क्यों को तो समझ नहीं पाते और गुस्सा आ जाता है। बहुतों को एक बात पर गुस्सा आता है कि दूसरे लोग हमारे सामने झूठ क्यों बोलते हैं, हम तो सत्य प्रेमी हैं और किसी ने मेरे आगे झूठ बोला, मुझे पता था कि इसने गलती की और मैंने पूछा, उसने झूठ बोल दिया, तो गुस्सा तेज आ गया। बाबा ने क्या कहा था पीछे कि उसने झूठ बोला और तुमने गुस्सा किया, अच्छा कौन है? वो भी फेल और तुम भी फेल, लेकिन एक फेल दूसरे फेल को पास कराना चाह रहा है, ठीक है ना। हम क्रोध करके खुद फेल हो गए और फेल होके सोच रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति झूठ बोलने की गलती न करे, वो फेल न हो, हम भले ही फेल हो रहे हो, तो कितनी बड़ी गलती हो गई। तो उस टाइम हमें धैर्यता का परिचय देना होगा। क्रोध को धैर्यता से जीता जा सकता है। उस एक सेकंड के लिए इस क्यों को आप हटाने का अभ्यास करें, क्योंकि उत्तर बाबा ने हमें अब दे दिए हैं। लंबा चौड़ा ज्ञान हम सबको मिला है, हर क्यों का उत्तर है हमारे पास। है क्यों का उत्तर? कोई व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उस सब क्यों का उत्तर हमारे पास है। इसलिए इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी, इसने मेरा अपमान क्यों किया, इसने ये गलती क्यों की, इसने मुझे सहयोग क्यों नहीं दिया, इसने ऐसा ऐसा क्यों किया। ये जो क्यों की लंबी लाइन हम अपने मन में लगाए रखते हैं जीवन में, इससे जरा बच कर रहें। और एक चीज का ध्यान दें, सवेरे जल्दी उठने से और अच्छे विचारों में रमन करने से भी क्रोध को जीतने मदद मिलती है। क्यों? कि अगर एक व्यक्ति लेट उठता है, आपका भी अनुभव होगा, 8 बजे मान लो उठे, 9 बजे ऑफिस जाना है, तो क्या होगा? उठते ही परेशान कि देर हो गई, जल्दी चाय दो, और चाय अगर जरा सी देर हो गई तो और परेशानी, और वहीं से क्रोध की शुरुआत। तो अपने काम सवेरे उठ के जल्दी पूरे कर लेना, शांति से कर लेना, ये भी क्रोध को जीतने का एक तरीका है। तो अब आप इसके आगे खुद चिंतन करें कि क्रोध की अग्नि में हम अब जलते न रहें, नहीं तो एक ओर योग करेंगे दूसरी ओर क्रोध आएगा, तो बैलेंस बराबर होता जाएगा। संभव है माताएं चिड़चिड़ापन न हो, कितनी बीमारी हो जाए और काम भी करना पड़ रहा हो तो भी चिड़चिड़ापन न हो। मान लो आप बीमार हो और आपने अपना काम धीरे धीरे कर दिया है और आप अपना रेस्ट करने जा ही रही थी कि अब तो काम पूरा हो गया, बुखार था, रेस्ट कर लूं, और फट से 2 मेहमान आ गए, तो क्या स्थिति होगी मन की? परेशानी होगी कि ये क्यों आ गए अब? आपको कोई अच्छा काम करना था, अब काम खत्म करके सेंटर में जाना था, ज्ञान योग करना था, और कोई काम आ गया, मेहमान आ गए। तो जीवन में ये एक नियम बना लें कि जिस समय जो काम सामने आ जाए, दूसरी अपनी इच्छा का त्याग कर दें। जो जरूरी काम करना है उसके लिए एक दूसरा काम तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई लोग इस बात से बड़े परेशान होते हैं कि हमारी तो ये प्लानिंग थी आज की, 8 से 9 हमें ये करना था, 9 से 12 ये करना था, तो उसमें प्लानिंग में अपने को टाइट न कर दें। बीच में अगर कोई दूसरा काम आ गया तो उसको भी उसमें एडजस्ट करना सीख लें, ऐसा सरल स्वभाव हमारा हो, और अगर सरल स्वभाव से हम काम करने का अभ्यास डालेंगे तो ये चिड़चिड़ापन और क्रोध समाप्त होता जाएगा। तो होगा, क्रोध छूटेगा। जब भी क्रोध आए तो क्या याद करेंगे? चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आ गया, कोई दूसरा कुछ कहेगा तो उससे तो गुस्सा बढ़ जाएगा। हम अपने को क्या कहेंगे उस टाइम? एक ऊंची बात याद रखेंगे कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है सारे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है ना, बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं तुम्हें विश्व में शांति स्थापित करनी है। तो शांति स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं अशांति स्थापित नहीं कर सकते। बस अपने को चेंज कर लेना है, दूसरे को चेंज होने की इंतजार नहीं करनी है। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है जीवन में कि वो हमेशा ही दूसरे को दोष देता है। अगर किसी से आपका झगड़ा हो गया तो हमेशा मन में क्या रहेगा, उसने ये गलती की, मुझे ऐसे ऐसे बोला, और वो भी यही सोचेगा कि इसने ये गलती की, मुझे ऐसे ऐसे बोला। और बाबा ने तरीका बताया, मन की गति बताई कि तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लो। गलती दोनों ही तरफ होती है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ये ज्ञान युक्त आत्मा का चिन्ह है, अपनी गलती को सहज मान लेना ये शक्तिशाली आत्मा का चिन्ह है, और ये एक निर्मल चित्त की पहचान है। अपनी गलती जैसे ही हम स्वीकार करेंगे, आप देखेंगे दूसरा व्यक्ति भी तुरंत अपनी गलती महसूस करेगा। लेकिन हम जब उसकी ओर उंगली करते हैं तो वो हमारी ओर करता है, हम ही अपनी ओर करेंगे वो भी अपनी ओर कर लेगा, और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इस तरह क्रोध तो वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्र में क्यों मनुष्य को क्रोध आता है। जब उसकी इच्छाओं के विरुद्ध काम होता है तो ये कामना छोड़ देनी होगी कि सदा ही हमारी इच्छाओं के अनुसार ही संसार चलेगा। इसके बाद अब इच्छाएं जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अंतहीन है, और इच्छाएं मनुष्य की परेशानियों का कारण है। अगर किसी के जीवन में बहुत समस्याएं हैं तो उनका एक कारण बहुत इच्छाओं का होना है। अपनी इच्छाएं कम करो तो समस्याएं भी कम हो जाएंगी। और इच्छाएं कम करने का अर्थ है कि जो ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनके बिना काम चल सकता है, अनावश्यक इच्छाएं, उनका त्याग कर देना होगा। और योगी आत्माएं अगर इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन में कभी आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। इच्छाएं मनुष्य के मन की एकाग्रता को नष्ट करती हैं। अगर आपको योग में एकाग्रचित होना है तो सबसे पहला काम इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। ये दो चीजें बहुत मदद करेंगी, एक आत्मिक दृष्टि जो आज बाबा ने कहा, और एक अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। ये दोनों ही चीजें भटकाती हैं, इच्छाएं और दैहिक दृष्टि मनुष्य की वृत्ति को, मन को, चित्त को बहुत भटकाती है। इन दोनों पर ध्यान देने से हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना है, और देखना है इच्छाओं के बीच में एक शब्द है आवश्यकता। जो चीज मनुष्य देखता है उसकी आवश्यकता महसूस करता है। आप अपने घर में आराम से सो उठ रहे थे, पड़ोसी के घर गए, देखा एक बहुत अच्छा अलार्म बज रहा है, सोचा सवेरे 4 बजे उठने में अलार्म तो जरूरी है, और अलार्म खरीदने की इच्छा पैदा हो गई। और जब अलार्म खरीद लाए, 2 दिन तो उठे, और तीसरे दिन जैसे ही 4 बजे अलार्म ने नींद पिटाई और अलार्म बंद करके फिर सो गए। यही होता है ना, जो भी अलार्म से उठने के अभ्यासी हैं वो कभी उठने में सफल नहीं होते। उन्हें लगता है ये अलार्म हमारी नींद खराब करता है, और पता ही नहीं चलता, चुपचाप रजाई से हाथ बाहर निकलेगा और अलार्म का बटन बंद होगा ना, ऐसा ही। इसलिए आवश्यकताएं जो इच्छाओं को जन्म दे रही हैं, उन पे हम जरा ध्यान दें। जितने ज्यादा साधनों का प्रयोग हम अपनी साधना में करेंगे उतनी हमारी साधना निर्बल पड़ती जाएगी। साधना वही प्रबल होती है, वही शक्ति देती है जो साधनों के बिना की जाती है। साधनों का प्रयोग तो किया जा सकता है, परंतु साधनों से ही साधना होगी ऐसा नहीं है। इसलिए अपने ग्रस्त जीवन में बहुत सारी चीजें तो आपको चाहिए, गृहस्थ चलाना है, आपको ये भी सोचना है एक दो साल आगे की भी चीजें हमारे पास हों, लेकिन इसके बाद भी संग्रह करने की आदत न हो। ऐसी चीजें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रह करते रहना, इकट्ठे करते रहना, ये योगियों के मन को बोझिल कर देता है। जितनी चीजें आपके पास होंगी उतना ही मन फ्रेश और बाबा की याद में उड़ान भरेगा। ऐसा सत्य सिद्धांत है, इसीलिए प्राचीन काल से ऋषियों ने, सन्यासियों ने ये नियम बनाए कि कुछ भी अपने पास नहीं रखो। सन्यासियों के ये नियम थे, जो कपड़े पहने हैं बस वही तुम्हारे हों, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब सन्यासी इस सिद्धांत से फिसल गए, आश्रम बना लिए और सोचने लगे आज तो एक ड्रेस है, कल एक धोनी भी तो पड़ेगी, तो दूसरी भी चाहिए, दो इकट्ठी की। फिर सोचा अब ये एक फट जाएगी, कहीं बाहर भी आना जाना पड़ता है, तो तीसरी भी तो चाहिए, तीसरी भी इकट्ठी की। फिर सोचा कि आने वाला समय न जाने कैसा हो, कोई शिष्य पैसे दे या न दे, तो थोड़ी और इकट्ठी कर लें। और इस तरह सन्यास ग्रस्त में बदल गया। और कोई भी सन्यासी ढूंढने पर ही आपको योगी दिखाई देगा, जो समाधि का अभ्यास करता हो, बाकी सारे सन्यासी पुजारी बनकर रह गए। तो संग्रह वृत्ति हमारे मन को बोझिल करती है और योग युक्त होने में बाधक है। इसलिए जो आवश्यक है वो तो रखना ही होगा, आप सब गृहस्थ में रहते हैं, परंतु ये भी देखना है कि साड़ियों से पेटी भरी है, लेकिन बाजार से गुजर गए एक नया डिजाइन बहुत अच्छा निकला है, तो वो भी होना चाहिए। ये सिद्धांत गलत है। आदत है ना ये बहनों की, बहुत आपकी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है योगी बनने के बाद। तो ये आदतें जो देखकर आवश्यकता महसूस होती है, इस आदत को अब योगी जीवन से निकाल देंगे तो इच्छाओं की गुलामी और जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर बड़े घर में ऐसा करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं, आपके मन में इच्छा है, बच्चे देखें या ना देखें, उनके मन में भी अनेक चीजें रखने की इच्छा पैदा हो जाएगी। इस तरह इच्छाओं को, अनावश्यक इच्छाओं को त्याग करें। अब इसके आगे चलें, दो चीजें जीवन में बहुत परेशानी पैदा कर रही हैं, संसार में भी और कहीं कहीं ब्राह्मणों के जीवन में भी रुकावट, एक अहम और दूसरा बहम। भाइयों में कौन सा होता है मानते हैं आप, और बहनों में बहम। प्रसिद्ध बात है ये, अहम और बहम, अनुमान लगाना। और अगर योगी आत्माएं अनुमान लगाते रहें तो उनके संकल्प कभी भी एकाग्र होंगे। कहीं भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि ये जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा सोचते रहना, देखा मैंने उनको ये बात कही थी, ये फौरन उसको बता दी है, अनुमान लगा लेना। कोई भी घटना के बाद बहुत ज्यादा सोचना, ये अनुमान योगियों का चिन्ह नहीं है। तो बहने और भाई दोनों ही, अनुमान की आदत भाइयों में भी होती है, और अनुमान के साथ एक और चीज का भी ध्यान दें जो हमें महान बनाने में बहुत बड़ा काम करता है, समा लेना। ये नहीं कि एक बात सुनी और जब तक वो चार को न सुनाए तो अंदर हलचल मचती रहे। समा लें, जो भी सुना जो भी देखा उसको सहज समाने की आदत हो। अगर हम समाना नहीं जानते तो हम गंभीर नहीं बन सकते, मैच्योर नहीं बन सकेंगे। और हमारे पास जो चीज हम बोल देते हैं ना, तो बोलने से उसकी धारणा भी समाप्त होने लगती है, धारणा शक्ति नष्ट होती है जो व्यक्ति बोलता ही रहता है। तो पहले से ही एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी सारे संसार में, जब प्रचार के साधन नहीं थे, रेडियो अखबार ये छपाई आदि नहीं थी, तो अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता था किसी शहर में और उसको बताना है कि भाई मैं वैद्य हूँ और वैद्य आया हूँ और आप जिसको इलाज कराना हो कराओ, तो प्रचार कैसे करे, क्या तरीके थे, ढिंढोरा पिटवा दिया। लेकिन एक बड़ा रॉयल तरीका कई व्यक्तियों ने अपनाया कि वहां जाते ही एक किसी बहन को बता दिया और एक बच्चे को, और अगले दिन सारे शहर को पता चल गया कि यहाँ एक वैद्य जी आए हैं। समझ गई बहने, नहीं समझा, सुनते हैं और देखते हैं। उनको फटाफट वर्णन कर देने की आदत। जो भाई लोग चले गए अपने काम पर, बहनों ने भोजन बनाया और घर में पंचायत लगी और इधर उधर की बातें, ये अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, माताओं को स्वीकार है, अब चर्चा ज्ञान और योग की ही हो। जो समय बचता है उसका उपयोग जीवन को, अपने और दूसरे के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में हो। किसी भी चीज का अनुमान लगा लेना अपने को व्यर्थ में उलझाना है। कोई भी घटना हो गई, मान लो किसी ने आप पर कोई कमेंट कर दिया, कोई टीका टिप्पणी कर दी, कोई उल्टा बोल बोल दिया, और आप अनुमान लगाकर ये सोचते रहे कि हाँ ये मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा, फलाने ने इसे बताया होगा, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे तंग करना चाहते हैं, और सोच सोच के अपनी नींद फिटा लेना, ये गलत है। और जब आपको रियलिटी का पता चलेगा तो आप पाएंगे कि वहां तो कोई बात ही नहीं थी, उसने तो बेचारे ने हंसी में कहा था ऐसे ही। तो हम हमेशा एक चीज पर चिंतन करते हैं, जरा आप उसको गंभीरता से देखें। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे को कोई कुछ बुरा न बोले, कमेंट न करे, मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहे, मुझे कोई कुछ कहे नहीं, बस तो मैं ठीक। हर व्यक्ति कमेंट सुनने से डरता है और हर व्यक्ति दूसरों पर कमेंट करने में कभी नहीं चूकता। ठीक है ये बात। जो व्यक्ति ये सोच रहा है मेरे पर कोई टीका टिप्पणी न करे, वो भी टीका टिप्पणी दूसरों पर करने में जरा भी पीछे नहीं रहता, तो आखिर कौन टीका टिप्पणी बंद करेगा। हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है, इसलिए अगर हमें डर है, अगर हम कमेंट्स का टीका टिप्पणी का दुष्प्रभाव जानते हैं तो हमें करनी भी नहीं चाहिए। ठीक बात है।
तो न तो हम दूसरों पर कमेंट्स करें, और अगर दूसरे हम पर टीका टिप्पणी करते हैं तो दूसरों के द्वारा की गई टीका टिप्पणी को सरलता से लें, सीरियसली नहीं। आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ बोलता है तो वो बहुत समय से अपने मन में कई चीजें इकट्ठी करता रहता है आपके विरुद्ध, और जब भी आपने कोई गलती की फौरन बोल देता है, सारा अपने मन में भरा हुआ गुब्बार निकाल देता है, और गुब्बार निकालने के बाद वो व्यक्ति हो जाता है हल्का। हम इस साइकोलॉजी को समझें। जो व्यक्ति हम पे टीका टिप्पणी करता है वो टीका टिप्पणी करने के बाद हल्का हो जाता है, तो हम टीका टिप्पणी सुनकर भारी क्यों हो। वो हल्का हो गया, हम भी हल्के हो जाएं। ऐसा सरल दृष्टिकोण आप कमेंट्स के बारे में अपना लें तो दूसरों के द्वारा कही हुई बातें आपको और अधिक धीर्यवत और शक्तिशाली बनाती जाएंगी। हंस के टाल दें दूसरों की बातों को। गंभीरता का अर्थ ये नहीं होता कि चुप रह जाएं। चुप रहने से कहीं कहीं मायूसी आ जाती है। कोई कुछ ज्यादा बोल रहा है, हंस के हल्का कर दें, कोई एक लाइन हल्की बोल के उस बात को समाप्त कर दें, ये आर्ट सीख लेना चाहिए। अब चलें अहम की ओर। अहम भी एक ऐसा विष है। अगर किसी मनुष्य के अंदर हजारों गुण हैं, हजारों, लेकिन एक अहम भी है, तो ये अहम मानो उसके अमृत तुल्य जीवन में जहर की बूंद है, और जो सारे ही अमृत को जहरीला कर देता है। इसलिए ये अहम जो बुद्धि की शक्तियों को नष्ट करता है, और निरहंकारी बनना हमारी संपूर्णता के लक्ष्य की एक बहुत बड़ी धारणा है। हम अपने अहम को पहचान लें। अहम और मैंपन दोनों ही बड़े सूक्ष्मता से मनुष्यों को पकड़े हुए हैं। मैंने ये किया, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं बड़ा हूं, घर का मालिक हूं, ये मैंपन धीरे धीरे समर्पित करते चलें। और मेरे ये गुण हैं, मेरी ये शक्तियां हैं, मेरा इतना धन है, मेरा इतना मान है, समाज में अहंकार की भावना से रहना, इसको भी पकड़ लें कहां काम कर रहा है। और जो कुछ भी हमारे पास है,
अहंकार को नष्ट करने का तरीका है ये। जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वरीय देन है, चाहे कोई टैलेंट है, कोई गुण है, कला है, शक्ति है, धन है, वो ईश्वरीय देन है। वो कभी किसी के पास होता है, कभी किसी के पास, ईश्वरीय देन है वो। हमारी महानता नहीं, हमारी कमाल नहीं, हमने मेहनत करके उसको नहीं कमाया है, ईश्वरीय देन हुई है हम पर। ये चीज मन को बड़ा निर्मल रखती है और अहंकार को समाप्त करती चलती है। नहीं तो अहंकार, अहंकार के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है कि अहंकारी व्यक्ति को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती, स्वप्न में भी वो डरावने स्वप्न ही देखता रहेगा। अहंकार ऐसा एक बीज है जो जीवन को अशांत करता रहता है, इस बीज को जलाते चलना है। बहुत सूक्ष्म बात होती है अहंकार को पकड़ना, मोटी बात नहीं है। पकड़ना पहले और उसको ज्ञान योग के बल से नष्ट कर देना, इस पर भी आप ध्यान देंगे जरा, न हमारे बोल से हमारा अहंकार का प्रदर्शन हो, न हमारे कर्मों से, न हमारे व्यवहार से। हम सब बाबा के हैं, ऐसी भावना अपने अंदर बढ़ती चले। और मैंपन के लिए भी कि सब कुछ अब बाबा ही हमारे द्वारा करा रहा है, इस महसूसता से मैंपन को समाप्त करते चले। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस महाभारत में तो नहीं दिखाया कि अर्जुन को अनेक बार अहंकार हुआ कि मैंने महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, और श्री कृष्ण ने उसको अनुभव कराया कि तुमने नहीं जीता, वो मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ थी इसलिए युद्ध जीता। आपने सुना ही होगा, जब इनका राज समाप्त हो गया पांडवों का, और अर्जुन गोपियों को और धन को मांगने के लिए गया श्री कृष्ण के पास, और द्वारका से धन, सोना चांदी और गोपियों को लेकर आ रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, भीलों ने उसे लूट लिया, मारा पीटा खूब। तो बहुत प्रसिद्ध वो कहावत है कि वही अर्जुन था और वही उसके धनुष बाण थे, लेकिन भीलों ने उसको लाठियों से मारा पीटा और सब धन छीन लिया। कहाँ चली गई उसकी शक्ति? श्री कृष्ण ने अपनी ईश्वरीय शक्ति उससे हटा ली। तो इस तरह हमारे अंदर अगर ये अहंकार आता है कि ये काम मैंने किए हैं, तो ये अहंकार गलत है। तो इस तरह अपने अहंकार को भी जीतते चलें, पकड़ना और जीतना। तो बहुत सारी धारणाएं हैं बाबा ने सिखाई हैं, इन पर आप स्वयं चिंतन करें, और सभी धारणाओं को अपनाने का तरीका ही है श्रेष्ठ नशे में रहना, योग के अभ्यास में रहना, अपने विचारों को ऊंचा करना, एकांत में जाकर स्वचिंतन करना। अब हम आपके सामने थोड़ी सी चर्चा योग की कर देते हैं। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना गुह्य सब्जेक्ट है, ये सरल भी है। बाबा ने संपूर्ण योग की परिभाषा, जिसकी परिभाषा ऋषि मुनि भी नहीं कर सके, आत्मा हो जाओ और मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, कितनी सरल कर दी। लेकिन यही योग इतना गंभीर और गहन भी है कि जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, उतना उतना ही योग क्या है ये हमारी समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहली चीज योग में, जो उस दिन भी हमने कही और आप यहां आकर महसूस कर रहे होंगे, कि बाबा से अपनापन बढ़ता चले। बाबा बाबा केवल याद न करते रहें, लेकिन वो सही अर्थों में मेरा है, ये मेरापन उससे बढ़ता चले। आप इस बात को रोज देखें कि संबंध के रूप से मैं समीप पहुंच रहा हूं बाबा के, मेरा है वो। मन में इस बात को लाते जाएं, महसूस करते जाएं, वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है, तो संसार का सारा मेरा मेरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ही मोह पैदा कर रहा है। इसके बाद आपने सर्व संबंधों की बात यहां बार बार सुनी है, हमें बाबा से अपने सब संबंध जोड़ने हैं, अर्थात वो मेरा है। कोई भी एक संबंध लेकर आप उस पर जरा चिंतन करें, और चिंतन क्या करेंगे, मान लो आप सोचते हैं कि भगवान मेरा दोस्त है या बच्चा है, तो पहले हमारा विवेक इस बात को स्वीकार कर ले। ये स्वीकार करने में देर लग जाती है, भगवान बच्चा है, होता है स्वीकार, बहुत देर लगती है। भगवान इतनी बड़ी चीज, सर्वशक्तिवान, वो मेरा बच्चा, जचती नहीं है बात, रिजेक्ट कर देता है हमारा इंटेलेक्ट उसको, हमारी बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं बाबा तो ठीक कहता है परंतु आ जाता है। तो हमारी विवेक शक्ति स्वीकार करे कि जब भगवान ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो दोस्त है। इस बात पर आप चिंतन करें, क्या हमारे विवेक ने स्वीकार किया या रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज, उस संबंध का हमें नशा होने लगे, भगवान मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, ये बात नशे में उतर जाए, बोल में नहीं, नशे में। और तीसरी बात कि जब मैंने उसको अपना दोस्त बनाया या बच्चा बनाया तो मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। बस इन तीन बातों में आप चिंतन करें और यही तरीका हो जाएगा किसी भी संबंध को अनुभव करने का। अब अगली बात योग के बारे में, योग के दो पहलू हैं, आत्मा हो जाना और बाबा से बुद्धि लगा देना। आत्मा हो जाना पड़ेगा हमें, आप इस अंतर पे ध्यान देंगे। एक है आत्मविमानी बनना, दूसरा है आत्मा हो जाना। तो जैसे आपको सिखाया है चिंतन करना कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, परम धाम से आई हूं, ये सिखाया ना। इसके साथ अब एक अभ्यास और जोड़ दें जिससे आप आत्मा हो जाएंगे, और वो अभ्यास है कि शांत बैठकर आप ऐसा विचार करें कि मेरे इस शरीर के सभी तत्व तत्वों में मिलने लगे, शरीर पिघलने लगा और सारे तत्व तत्वों में मिलने लगे, और जल्दी ही मेरा सारा शरीर लोप होकर तत्वों में मिल गया और रह गई मैं आत्मा। और कैसी आत्मा? एक ऐसा चेतन बिंदु, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिससे चारों ओर अष्ट शक्तियों की किरणें 8 रंगों में फैल रही हों, ऐसा मेरा स्वरूप है, बस वो मैं आत्मा रह गई। बस इसका अभ्यास बढ़ाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आत्मा होने का अभ्यास, आत्म चिंतन भी करें तो आत्मा का दर्शन भी करें, आत्मा हो भी जाएं। अब ऐसे ही बाबा की ओर चलें, शिव बाबा। अब यहां हम शिव बाबा की बात कर रहे हैं, परम धाम में अपने तेजस्वी स्वरूप में विराजमान हैं, जिससे चारों ओर अनंत शक्तियों की किरणें रंग बिरंगे रूप में फैल रही हैं। आप एक चित्र बनाओ अपनी बुद्धि में, शिव बाबा परम धाम में हैं, उनसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं दूर दूर तक। उसको आप दर्शन करें, पहले चिंतन भी और दर्शन भी, और फिर इस बात को इस तरह मोड़ लें कि वो सारी ही किरणें अब मेरी ओर को आ रही हैं और मैं आत्मा उनको ग्रहण कर रही हूं। बस ये है योग का सबसे शक्तिशाली स्वरूप, इसको बिंदु रूप भी कह सकते हैं, बीज रूप। इसमें कई बातें हैं जो पुरुषार्थियों को कंफ्यूज करती हैं कि हम परम धाम में जाएं वो बिंदु रूप है या क्या। हम परम धाम में भी जा सकते हैं संकल्प से, परम धाम में जाने का अर्थ ये नहीं कि आत्मा निकल के चली जाएगी, हमारी बुद्धि हमारा मन परम धाम में गया और बाबा के साथ मैं आत्मा बैठी हूं, उसकी किरणें ग्रहण कर रही हूं, या मैं आत्मा यही हूं इस शरीर में, एक तो शरीर लोप हो गया, दूसरा मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच बैठी हूं और बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर रही हूं। ये भी योग की शक्तिशाली स्थिति है जिसका अभ्यास आप कर्मों में भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर्म करते बाबा की शक्तियों की लहरें, झरना मेरे ऊपर बह रहा है। यह योग की बहुत सुंदर और बड़ी सरल शक्तिशाली स्थिति। बस बात करना रूढ़िहान है, बात करने में आप स्वयं को सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने देखो या आप यहीं से बात करते रहो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये केवल भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई कोई कह देते हैं कि वहीं जाके या दूर ध्यान करनी, वह भी ठीक है, लेकिन यहां से भी की जा सकती है। बाबा के एक बड़े ही रहस्य भरे महावाक्य हमें याद रखने चाहिए, तुम बच्चे मुझे जहां और जिस स्वरूप में याद करोगे मैं वहां उस स्वरूप में ही उपस्थित हो जाऊंगा। ये अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं, गीता में भी ये महावाक्य हैं। तुम जहां और जिस स्वरूप से मुझे याद करोगे मैं वहां उसी स्वरूप से उपस्थित हो जाऊंगा। तो बाबा परम धाम में हो या आप उसका आह्वान कर लें कि जरा नीचे जाओ, बहुत समय रहे हो परम धाम में, अब क्या करोगे, और देखो कि बाबा नीचे आकर मेरे ऊपर छत्र के रूप में स्थित हो गया, अब मैं हूं सर्वशक्तिवान के छत्र के नीचे। बहुत शक्तिशाली योग, बिल्कुल इजी, आपको परम धाम में जाने का कष्ट भी नहीं, परम धाम वाला ही नीचे उतर आता है। ये सभी योग के तरीके हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। आप चाहे चिंतन कर रहे हो आत्मा का, शिव बाबा का, बात कर रहे हो शिव बाबा से, बाप दादा से, ब्रह्मा बाबा से, इस तरह अभ्यास कर रहे हो, वो सभी योग में गिनती होता है। इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है अभ्यास को बढ़ाने की। बस इस तरह आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो योग का दिनों दिन अच्छे से अच्छा अनुभव होगा। और इस योग के साथ एक चीज को और जोड़ के रखें, ईश्वरीय नशे में रहना। मुरलियों में अनेक नशे की बात आती है, एक दिन के लिए एक नशे की बात अपने साथ रख लें और उस नशे में रहें, तो ये नशा हमारे मन को विस्तार से रोकता है, एकाग्र होने में मदद करता है। इस तरह आप नशे में रह के योग का अभ्यास करेंगे तो जल्दी जल्दी योग आगे बढ़ेगा और जितनी भी धारणाएं हमने चर्चा में लाई हैं वो सब सहज हो जाएंगे। ओम शांति। अभी सभी इसी स्थिति में बैठेंगे कि बाबा छत्र बनकर हमारे ऊपर ही उपस्थित है। ओम शांति।